ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रवासी भारतीयों के लिए रिमोट वोटिंग व्यवस्था शुरू करने का किया प्रस्ताव। रायपुर से बिलासपुर और अंबिकापुर के लिए हवाई सेवा अब सप्ताह में 6 दिन चलेगी। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर रायगढ़ में 1,12,00,000 रुपए की ठगी। पश्चिम बंगाल से 3 आरोपी गिरफ्तार। और रायपुर में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज हुआ समापन। अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के प्रवासी लोगों के लिए रिमोट वोटिंग व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए बहु निर्वाचन क्षेत्र में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा। इस मशीन के द्वारा एक मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान किया जा सकता है। अगर ये सुधार लागू होता है तो अपने मूल निवास स्थान से काम के सिलसिले में देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान कर सकेंगे। आयोग ने बहु निर्वाचन क्षेत्र प्रोटोटाइप रिमोट ईवीएम की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन करने के लिए सभी मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय और 57 राज्य दलों को आगामी 16 जनवरी को आमंत्रित किया है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर और रायपुर से अंबिकापुर के लिए हवाई सेवा अब सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार के लिए शुरू कर दी गई है। ये सेवा पहले सप्ताह में 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को संचालित की जा रही थी। एयरलाइंस के नए शेड्यूल के अनुसार अब रायपुर से अंबिकापुर की उड़ान सुबह 9 बजे प्रारंभ होगी और 10:15 बजे अंबिकापुर पहुंचेगी। 10:40 पर विमान बिलासपुर के लिए रवाना होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगामी शिक्षा सत्र में सभी विद्यार्थियों को समय सीमा में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए वितरण कार्य की निगरानी ऑनलाइन ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से की जाए। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 7 विशेषज्ञ चिकित्सकों और 35 चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति का आदेश जारी किया है। इनमें रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के शासकीय अस्पतालों में 6-6, बिलासपुर संभाग में 12 और सरगुजा संभाग में 5 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन डॉक्टरों को संबंधित जिले के ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला चिकित्सालयों में पदस्थ किया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने DLED प्रथम और द्वितीय वर्ष अवसर परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम ने वार्षिक परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा की मुख्य परीक्षा 1 मार्च से शुरू होकर 26 मार्च तक चलेगी। वहीं 11वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 1 मार्च से तथा 9वीं और 10वीं की परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू होगी। ये परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी। प्रायोगिक परीक्षा अवकाश के दिनों में भी ली जाएंगी। वहीं शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद ने स्थगित परीक्षाओं के लिए नई समय सारणी जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 5 जनवरी को आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं के लिए रायपुर, नवा रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, जिसे परीक्षार्थी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सुख समृद्धि की कामना की है। राज्यपाल ने कहा है कि नया साल एक नई संभावना, नए दृष्टिकोण और नए उत्साह के साथ आ रहा है। हमें साथ मिलकर एक सशक्त और समृद्ध प्रदेश के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाकर देश की प्रगति में योगदान देना है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने वर्ष 2024 को राज्य के लिए उपलब्धिपूर्ण बताया है।
2024 की मैं बात करूं तो न केवल देश के लिए, हमारे राज्य के लिए उपलब्धियों भरा रहा। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला वर्ष रहा है। छत्तीसगढ़ के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम ये हुआ है। चाहे वो 3100 रुपये क्विंटल में धान खरीदी हो, 2 साल का पुराना बोनस देने का मामला हो, 70 लाख माताओं और बहनों को महतारी बंधन की राशि देने का मामला हो, तेंदुपत्ता का पारिश्रमिक बढ़ाने का मामला हो, मोदी की एक एक गारंटी हमने पूरी की है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राजधानी रायपुर में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज समापन हो गया है। अंतिम दिन खेले गए फुटबॉल के फाइनल मुकाबले में संथाल परगना ने केरल को टाई ब्रेकर में 1-4 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। केरल की टीम उपविजेता रही और झारखंड की टीम ने 3रा स्थान प्राप्त किया। वहीं तीरंदाजी प्रतियोगिता में बालक वर्ग में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बालिका वर्ग में कर्नाटक का दबदबा रहा। तीरंदाजी की जूनियर बालक वर्ग प्रतिस्पर्धा में राजस्थान के हिमेश बरांडा ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं जूनियर बालिका वर्ग में ओडिशा की मंजुलता ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता में देश के 29 राज्यों के साथ ही नेपाल के लगभग 600 जनजाति बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और विजेता टीम को पुरस्कृत किया। वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय खेल प्रमुख फुल शेरिंग लेपचा ने आकाशवाणी समाचार को बताया।
27 दिसंबर से चले इस 24वीं राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में देश के 29 प्रांत से 579 खिलाड़ी ने भाग लिया, जिसमें दो इवेंट था, एक आर्चरी दूसरा फुटबॉल। आज का जो अंतिम परिणाम हमारे सामने आया, जिसमें फुटबॉल में संथाल परगना फर्स्ट हुए हैं और केरला सेकंड पोजीशन में है, थर्ड पोजीशन में झारखंड। इसी प्रकार से आर्चरी का भी अपने 3 दिन तक मैच रहा। इस मैच में राजस्थान फर्स्ट रहा, उत्तर प्रदेश सेकंड रहा।
राज्यस्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन 8 से 10 जनवरी तक रायपुर में किया जाएगा। इन खेलों की प्रतिस्पर्धाएं रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजर इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम और सप्रशाला मैदान में होगी। इसमें प्रदेश भर से लगभग 2000 प्रतिभागी शामिल होंगे। वहीं राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 12 से 14 जनवरी तक युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। युवा महोत्सव में प्रदेश के लगभग 2500 कलाकार और प्रतिभागी भाग लेंगे। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर रायगढ़ के तमनार में 1,12,00,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार सावित्री नगर कॉलोनी में रहने वाले गोपाल कृष्ण शर्मा के मोबाइल पर अज्ञात व्हाट्सएप नंबर से शेयर मार्केट में ऊंचे रिटर्न प्राप्त करने का मैसेज आया। फिर उसी नंबर से एक लिंक भेजा गया। इस लिंक को डाउनलोड करने के बाद विभिन्न खातों में रुपए ट्रांसफर कराए गए। बताया गया कि प्रतिदिन 10-50% तक कमा सकते हैं। पोर्टल में बढ़े हुए रुपए भी दिखने लगे, लेकिन जब ये रुपए निकालने की कोशिश की गई तो वे पीड़ित व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए। इसके बाद इस मामले की शिकायत पुलिस में की गई। शिकायत मिलने के बाद बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला के निर्देश पर रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने ऑनलाइन फ्रॉड सेल के गठन का निर्देश दिया। टीम ने कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से भारतीय स्टेट बैंक के 35 खाते, 3 ATM, 1 क्रेडिट कार्ड, 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 18,00,000 रुपए के चेक की छाया प्रति बरामद की गई है। रायपुर जिले के धरसियो इलाके में बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 13 अन्य घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार धमतरी निवासी एक परिवार अमरकंटक से वापस लौट रहा था। इसी दौरान उनका वाहन खराब हो गया और सभी लोग हाईवे के किनारे बैठे हुए थे। तभी सिलतरा ओवर ब्रिज के पास तेज रफ्तार ट्रक ने इन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बालोद जिले के गुरूर थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक वैन आज अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार निपानी गांव के आत्मानंद स्कूल के 12 बच्चे वैन में सवार होकर स्कूल जा रहे थे, तभी सोहपुर गांव के पास वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। इधर जांजगीर चांपा जिले के गोविंदा गांव में 2 मोटरसाइकिलों के बीच आमने सामने से टक्कर हो गई और टक्कर में एक महिला की मौत हो गई जबकि एक बच्ची सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। वहीं सकती जिले के बारद्वार थाना क्षेत्र में कार और मोटरसाइकिल के बीच भिड़ंत होने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायपुर के चंगोरा भाटा इलाके में बीती रात आपसी विवाद के चलते बजरंग दल के नेता सहित 2 युवकों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। और कोंडागांव जिले के फरसगांव पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 15 किलोग्राम से अधिक का गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 1,50,000 रुपए बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रवासी भारतीयों के लिए रिमोट वोटिंग व्यवस्था शुरू करने का किया प्रस्ताव। रायपुर से बिलासपुर और अंबिकापुर के लिए हवाई सेवा अब सप्ताह में 6 दिन चलेगी। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर रायगढ़ में 1,12,00,000 रुपए की ठगी, पश्चिम बंगाल से 3 आरोपी गिरफ्तार और रायपुर में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ समापन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।